डॉक्टर रश्मि ने आस्था को चेक करना शुरू कर दिया था, लेकिन आस्था बिल्कुल ठीक थी, उसका बच्चा भी ठीक था। अब आगे, लेकिन आस्था को कोई ऐसा सदमा लगा था जिसकी वजह से वो इस तरह फेंट हो गई थी। क्योंकि रश्मि इतना तो समझ चुकी थी, क्योंकि आस्था जब उसे पहली बार अस्पताल में मिली थी तब उसे कुछ इसी तरह का पैनिक अटैक आया था, तो उसे इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि आस्था को ज़रूर किसी बात का सदमा लगा होगा। तब रश्मि ने आस्था को एक इंजेक्शन इंजेक्ट किया और अरमान की ओर सवालिया नज़रों से देखकर बोली, अच्छा अरमान, क्या तुम्हारी आस्था से किसी बात को लेकर कोई बहस हुई थी या कोई और बात हुई थी? जैसे ही रश्मि ने सवाल किया, अरमान उसे घूर कर देखते हुए बोला, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, हाँ, और भला मेरी उससे बहस क्यों होगी, हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। क्या बात है, मेरा बच्चा तो ठीक है ना, आस्था तो ठीक है ना? ऐसा बोलकर अरमान अब रश्मि के चेहरे की तरफ देखने लगा था। लेकिन इससे पहले कि रश्मि कोई जवाब दे पाती, तुरंत दादाजी, आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान, सभी के सभी वहां आ गए थे। उन्हें देखकर दादाजी फिक्रमंद होकर रश्मि से बोले, रश्मि बेटिया, आस्था बेटी को क्या हुआ, वो ठीक तो है ना? तब रश्मि हल्का सा मुस्कुराकर बोली, दादाजी आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आस्था भी ठीक है और बच्चा भी बिल्कुल ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे उसने कुछ देख लिया हो, वो किसी शौक में है। तभी अरमान ने अपनी आंखें बंद की थीं और तब उसे ध्यान आया कि होटल में दो लोगों की लाशों को उसने अपने बॉडीगार्ड से ठिकाने लगाने के लिए कहा था। कहीं आस्था ने उन लाशों को तो नहीं देख लिया? कहीं ना कहीं जैसे ही अरमान के दिमाग में ये आया, उसने अपने हाथों की मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया था और बिना किसी से कुछ कहे वहां से बाहर निकल गया। अब अरमान को जाता हुआ देखकर सभी हैरान हो गए और दादाजी कन्फ्यूजन से बोले, दादाजी अब हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तब रश्मि ना समझी से उन सबकी ओर देखकर बोली, क्या बात है, ऐसा लग रहा है कि आप सब लोग किसी बात को लेकर परेशान हो रहे हैं। तब दादाजी ने गर्दन हिलाते हुए रश्मि से कहा, कुछ नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, आप परेशान मत होइए। और आस्था बेटी को होश कब तक आएगा? तब रश्मि ने उन्हें बता दिया कि एक से दो घंटे के अंदर अंदर आस्था को होश आ जाएगा, तो वो लोग फिक्र ना करें। तब दादाजी ने हल्के से मुस्कुराहट के साथ रश्मि को बोला, आप भी अब जाओ अपने कमरे में आराम करो। ऐसा बोलकर दादाजी ने रश्मि को भी आराम करने के लिए भेज दिया था और फिर बाकी सबकी ओर सीरियस एक्सप्रेशन से देखकर बोले, देखो उस दिन जब अरमान ने वो मर्डर किया था, मैं उसे उस अस्पताल से ले आया था, साथ ही साथ मैंने एक किसी और बेनाम नंबर से पुलिस में ये बता दिया था कि एक उस अस्पताल के डॉक्टर राजवीर ने एक आदमी की बेरहमी से जान ले ली है। तो जब पुलिस उसे पकड़ने के लिए गई, तब तक राजवीर मतलब वो डॉक्टर वहां से अपनी बीवी को लेकर गायब हो गया था। उस दिन के बाद मुझे लगा कि शायद उसने वो शहर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया, क्योंकि उस दिन के बाद से उससे हमारा कोई सामना नहीं हुआ था। लेकिन अब इतने सालों के बाद वो इस शहर में वापस आया है और उसने आते ही अरमान को भी पहचान लिया, और ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे किसी अनजाने खतरे का आभास हो रहा है। जैसे ही दादाजी ने ये बोला, सब दादाजी की ओर देखने लगे थे, लेकिन तभी नानी माँ तुरंत वहां आई और अटकते हुए बोली, भाई साहब क्या हुआ मेरी बेटी को? आस्था ने जब वो सुमित के होटल में जा रही थी, तब उसने घर पर नानी माँ को भी फोन करके बता दिया था कि वो कॉलेज से आ गई है और दादाजी का फोन आया है, दादाजी उसे बुला रहे हैं। अब जैसे ही नानी माँ ने ये सवाल किया, दादाजी हैरानी से बोले, लेकिन बहन जी आपको कैसे पता चला कि बिटिया हमारे पास होटल में आ रही थी? तब नानी माँ हल्का सा दिखने वाले मुस्कुराहट के साथ बोली, वो उसने फोन करके बता दिया था कि वो वहां जा रही है। तब दादाजी थोड़े से हैरान भी थे और साथ ही साथ आस्था के साथ दिल को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित भी थे, कि आस्था का एकदम साफ दिल था, दूसरों के दर्द में उसे भी दर्द होता था, और वो एक ऐसे इंसान के पल्ले बंधे हुई थी जो इंसान उसे चाहता तो बहुत था, लेकिन उसका हद से ज्यादा चाहना किसी भी लिहाज से ठीक नहीं था। तब अचानक दादाजी को एक आइडिया नजर आने लगा और वो नानी माँ की ओर देखकर बोलते हैं, अच्छा बहन जी, आप गांव चलने की बात कह रही थी, हमने आपसे बोला भी था कि अगले हफ्ते हम गांव जाएंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि आस्था बेटी को प्रेगनेंसी की हालत में शहर की आबोहवा कुछ खास ठीक नहीं लग रही है, तो अगर आपको ठीक लगे तो क्या हम कल ही गांव के लिए निकल सकते हैं? जैसे ही दादाजी ने ये कहा, सभी चौंक गए थे, वहीं नानी माँ के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी और वो बिना देरी किए बोली, अरे भाई साहब, नेकी और पूछ पूछ, बिल्कुल हम भी यही तो चाहते हैं कि आप सबके सब गांव चले जाएं, ठीक है तो हम अभी से तैयारी शुरू कर देते हैं। ये बोलकर नानी माँ अपने कमरे में चली गईं। तब सुमित हैरानी से दादाजी की ओर देखकर बोला, लेकिन दादाजी ऐसी हालत में क्या अचानक से गांव जाना ठीक रहेगा? अभी सुमित ने इतना ही बोला था तभी दादाजी बोल उठे, देखो जब तक मैं इस बात की तसल्ली नहीं कर लेता कि वो डॉक्टर यहां से चला गया या नहीं गया है, तब तक मैं अरमान को यहाँ रखने का खतरा किसी भी कीमत पर मोल नहीं ले सकता हूँ। तुम नहीं जानते हो, बचपन में अरमान ने उसे खून करते हुए देखा था। तब से वो उसी की तरह खून करने लगा है, उसी के जैसा हो गया है। और अगर अरमान उसे एक बार फिर मिला तो ये किसी के लिए भी ठीक नहीं रहेगा, ना हमारे लिए ना ही किसी और के लिए। जैसे ही दादाजी ने ये कहा, सब एकदम बिल्कुल शांत हो गए थे। कहीं ना कहीं दादाजी की बातों में उन्हें दम नजर आ रहा था कि कुछ दिन के लिए अरमान को अगर इस आबोहवा से दूर लेकर जाया जाए तो हो सकता है कि वो एकदम नॉर्मल बर्ताव करे, और नॉर्मल बर्ताव करना उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आस्था अब माँ बनने वाली है। अगर अरमान इस सिचुएशन में आस्था से प्यार करेगा या उससे ओवर प्यार करेगा तो वो किसी भी लिहाज से ठीक नहीं रहेगा, ना ही अरमान के लिए ना ही किसी और के लिए। वेल, तब सभी वहां से चले गए थे। अब इस वक्त आस्था अकेली थी, लेकिन कुछ ही समय बाद रौनक आस्था के पास आकर बैठ गई थी, क्योंकि रश्मि ने रौनक को जाकर बता दिया कि आस्था की कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। तो रौनक खुद को रोक नहीं पाती और आस्था के पास आकर बैठ गई थी, और कितने ही देर तक बिना किसी इमोशन के वो आस्था को देखते रही, उसका हाथ थामे बैठी रहती है। वेल, नानी माँ उस पल के लिए उन सबको दिखाने के लिए कमरे में तो आ गई थी, लेकिन उसे आस्था का इस तरह से बेहोश होना उन्हें बेचैन कर गया था। साथ ही साथ वो रश्मि की बातें सुन चुकी थी। रश्मि जब अरमान को बता रही थी कि आस्था किसी शौक की वजह से बेहोश हुई है, तो नानी माँ सोचने लगी कि आखिरकार ऐसा क्या देख लिया आस्था बेटी ने जो वो इस तरह से बेहोश हो गई। तो इसीलिए अब नानी माँ ने देखा कि अब मिनी हॉस्पिटल के आसपास कोई नहीं है, तो चुपके से एक बार फिर नानी माँ वहां जाने लगी थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सबको ये पता चले कि नानी माँ बार बार आस्था के पास यूं क्यों जा रही है, जबकि दादाजी ने तो उन्हें पैकिंग करने के लिए कहा है। जैसे ही नानी माँ वहां गई और उसने रौनक को आस्था के साथ देखा, तो नानी माँ के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी, और वहां जाकर उन्होंने रौनक के सर पर हाथ रखा और उसे सहलाते हुए बोली, रौनक बेटिया, हम कल गाँव जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप भी अपनी पैकिंग कर लें, क्योंकि हम आपको अपना गांव घुमाना चाहते हैं।
अब जैसे ही नानी माँ ने बड़े ही प्यार से रौनक से ये कहा, तो रौनक ने बिना किसी इमोशन के नानी माँ की ओर देखा और फिर सीधा अपने कमरे में चली गई थी। तब नानी माँ ध्यान से आस्था को देखने लगी। आस्था को बेहोश हुए आधे घंटे से ज्यादा हो चुका था, लेकिन अभी तक उन्हें होश नहीं आया था, और नानी माँ सुन चुकी थी कि रश्मि ने बोला है कि एक घंटे के अराउंड आस्था को होश आ जाएगा, तो तब तक नानी माँ ने उसी के पास रहने का फैसला कर लिया था। वहीं दूसरी ओर अरमान इस वक्त उन गार्ड्स के साथ मौजूद था जिन गार्ड्स को उसने उन दो वेटर की लाश को ठिकाने लगाने के लिए कहा था जिनकी जान राजवीर जिंदल ले ली थी। तब अरमान ने उनसे सिर्फ एक ही सवाल किया था, क्या तुमने उन लाशों को निकालते हुए आस्था ने देखा था? अब वो गार्ड्स कन्फ्यूजन का शिकार हो गए थे। उन्हें कुछ याद ही नहीं था कि उन्हें आस्था ने देखा या नहीं देखा है। वो तो सिर्फ अरमान का दिया हुआ काम कर रहे थे। उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आया कि वो अरमान को क्या जवाब दे। तभी दूसरा गार्ड्स हिचके जाते हुए बोला, बॉस, हमें इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है। जैसे ही आपने हमें लाश ठिकाने के लिए कहा, लाश को हमने अच्छी तरह से बोरे में भर लिया था और सीधा उन्हें शहर के बाहर फेंक आए थे। इस बीच मैडम ने हमें देखा है या नहीं देखा, हम इसके बारे में श्योर नहीं है। अब जैसे उस गार्ड्स ने ये कहा, अरमान को ये बात कुछ खास पसंद नहीं आई और बारी बारी से उसने अपने दोनों गार्ड्स को बुरी तरह से घायल कर दिया था, और अरमान का चेहरा इस वक्त खून से रंगा हुआ बेहद खतरनाक दिखाई दे रहा था। वहीं दूसरी ओर राजवीर जिंदल तुरंत ही अपने विला में जा पहुंचा था। वहां जाकर उसने अच्छी तरह से पहले नहाया धोया, फिर अपनी बीवी की लाश को निकालकर वो उससे माफी मांगने लगा था और गिल्टी टोन में बोला कि कल रात मैं घर नहीं आ पाया, तुम उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज 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 मेरी सोना, मेरे बाबू, मेरे डार्लिंग, ऐसा बोलकर वो लाश के गालों को चूमने लगा था। तब वो लाश की तरफ से अपने आप ही अपनी आवाज में खुद को जवाब देने लगा, पहले तुम ये बताओ कि तुम कल रात कहाँ थे, किसी लड़की के साथ मुंह काला कर रहे थे? अब जैसे ही राजवीर ने खुद ही अपनी पत्नी की तरह आवाज में खुद से सवाल किया, और फिर राजवीर जिंदल बनकर जवाब देने लगा, नहीं नहीं मेरी जान, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं किसी के साथ नहीं था, बस एक जगह फंस गया था, कुछ लोग बेवकूफ लोगों ने मुझे बंद कर दिया था, पर तुम फिक्र मत करो, बहुत अच्छे से सजा देकर आया हूँ उन्हें, जो कोई भी तुम्हारे और मेरे बीच में आने की कोशिश करेगा मैं उसका नाम और निशान मिटा डालूंगा, तुम तो जानती हो अपने प्यारे पति देव को। तब एक बार फिर राजवीर औरत की आवाज में इतराते हुए बोला, बस बस रहने दो, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप बहाने बना रहे हैं। तब राजवीर जिंदल अपनी आवाज में अपनी पत्नी के होठों को चूमकर बोला, मेरी जान बस बस और कितना डांटोगी अपने पति को, चलो मुझे बहुत भूख लगी है, पहले मेरे लिए खाना लगा दो। ये बोलता हुआ राजवीर अब जल्दी ही उस लाश को लेकर डाइनिंग टेबल पर आ गया था। लाश को जैसे जैसे कुर्सी पर एडजस्ट कर राजवीर अब खुद ब खुद लाश की ओर देखकर उसे इसी तरह से बातचीत करते हुए खाना खाने लगा था।